उनका एक रात, एक साल उनका एक दिन होता है 24 घंटे, ऐसा उनके 100 साल तक पैरों के अंगूठे पे खड़े होकर, दोनों पैर के अंगूठे पे खड़े होकर, ताड़ासन बोलते उसको, वृक्षात वृक्ष जैसे, सब प्रकार की चींटियां धीरे 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 उसको ढक लिए, उसके मांस खून पी गए, नस को भी खा गए, सिर्फ हड्डी सांगड़ा, हाँ सिर्फ हड्डी रह गया बस, और वो भी वो वल्मीक चींटियों का घर जैसा, ऐसा छोटा सा एक पर्वत जैसा बन गया। तो देवतागण इधर बोले आराम से भी तपस्या कर रहा, आराम करो, पर देख रहे कि उसके तपस्या से इतना ऐसी गर्मी पैदा हो गई, हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, सब देवतागण भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे कि प्रभु ये असुर जो ऐसा यज्ञ ऐसा तपस्या कर रहा है, घोर तपस्या, तमोगुणी तपस्या। तपस्या तीन प्रकार की होती है, सत्वगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तमोगुणी तपस्या। सत्वगुणी तपस्या का मतलब क्या, जो तपस्या दिव्य श्रद्धा के साथ की जाती है, कोई भौतिक चीज की अपेक्षा के लिए न किया हुआ तपस्या, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने की उद्देश्य से किया हुआ जो तपस्या है वो सत्वगुणी तपस्या है, और वो तपस्या पूरे लोक मंगल जन कल्याण के लिए किया जाता है, और वो बहुत ही अनुकूल वातावरण पैदा करता है, पीस एंड हार्मनी, शांति समृद्धि का कारण बन जाता है। रजोगुणी की तपस्या कैसी है, अहंकार से किया हुआ तपस्या, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए की हुई तपस्या, और जिसका परिणाम स्थिर नहीं है या शाश्वत नहीं है, ऐसे चीजों के लिए प्राप्त करने की ये हेतु है, भोग की प्राप्त करने की इच्छा, ये तपस्या रजोगुणी तपस्या है। और ये तपस्या से शुरू शुरू में उनको लगता है अमृत जैसा भोग मिलता है, पर बाद में वो विष जैसा साबित हो जाता है। और तमोगुणी तपस्या जिसका स्वरूप है हिरण्यकशिपु, वो तपस्या कैसा है, मूर्खतावश किया हुआ तपस्या। क्यों मूर्खतावश, क्योंकि ऐसी चीज की प्राप्ति के लिए जो प्राप्ति नहीं हो सकती, मैं कभी नहीं मरू, अरे ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है वो खुद मरने वाले, वो कैसे तुमको देंगे, हमेशा के लिए जीव में। तो मूर्खतावश की हुई तपस्या, अपने शरीर को तकलीफ देना, बहुत ही वृत्रासुर जैसे काट काट के, एक एक टुकड़े को काट के फेंकना, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शरीर को टॉर्चर करना, सेल्फ टॉर्चर, और दूसरों का नाश या दूसरों को तकलीफ देने के लिए तपस्या, रावण जैसे, रावण मतलब सबको रुलाने के लिए तपस्या, ताकत आ जाएगा तो फिर दिखाऊंगा सबको मैं जीवन, हैरान कर दूंगा लोगों का जीवन। आजकल के वैज्ञानिकों की तपस्या ऐसी है, बड़ा बड़ा बम बना रहे हैं, जगत वो अहित आ, केवल जगत के अहित के लिए बड़े बड़े दारूद बंदूक इत्यादि बनाकर एक दूसरे को कैसे मारे, तकलीफ दे। और प्रहलाद महाराज ने भी तपस्या की, वो दैवी तपस्या। सबसे बड़ी तपस्या क्या है, आराधितो यदि हरि ही तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि ही तपसा ततः किम। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी तपस्या है हरि की आराधना करना। क्यों क्यों सबसे बड़ी तपस्या, कौन सा बात है, आप बैठे हुए तपस्या कर रहे हो, आपको मालूम है श्रवणम सबसे बड़ी तपस्या है, जागे रहना ऐसे नहीं, बैठकर ध्यान से सुनना हरि कीर्तनम तपस्या, स्मरणम तपस्या। अब बोले क्या तपस्या, कुछ भी नहीं है तो? नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। आप पूछिए बाहर के लोगों को, किसी को बोलिए आके बैठने के लिए, बैठ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता। ईश्वरो हम, अहम भोगी सिद्धो हम, पूरी तपस्या दुनिया भर कर रहा है ताकि वो ईश्वर बने, भोगी बने, प्रभुत्व जमाए दुनिया में। तृणादपि सुनी चेन तरोरी वसिष्ठना अमानिना मान देन कीर्तनी। केवल वो तपस्या कर सकता है जो बड़ा नम्र है, सहिष्णु है, मान की अपेक्षा नहीं है, सबको मान देने वाला ही ऐसा बैठकर तपस्या कर सकता है, नहीं तो बैठेगा नहीं, बैठ ही नहीं सकता है। यहां हिरण्यकशिपु को बोलो हरि हरि बोलो, हनुमान जी ने बोला रावण को जय श्री राम, जय श्री राम, कभी नहीं ले सकते लोग हरि का नाम, केवल एक नम्र हृदय ले सकता है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भागवत कहता है तपो दिव्य, दिव्य तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। नौ प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज की दी हुई, 24 घंटे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बहुत सरल है। क्या करना, चुपचाप बैठे रहना, बस सुनते रहना, कुछ तपस्या है, कुछ नहीं, आराम से ऐसे बैठ गए। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु उल्टा सर के ऊपर पैर नीचे, क्या क्या करते वो लोग, सिर्फ अहंकार बढ़ता है, इतना बड़ा तपस्वी हूं, ये तपस्या कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी तपस्या यही है ये यज्ञ। तो भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, बोले उठ बेटा बहुत दिमाग खा रहा, क्या है चाहिए बोल, ऐसा क्यों तपस्या कर रहा है, सबको तकलीफ क्यों दे रहा है। अमर जो देवतागण है, ऐसे भी व्यक्ति जो हैं, तुम्हें जो मृत्यु निश्चित है उनको मैं वर देने के लिए आया, मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि मैं वो लेने ले वाला जो तू चाहता है, पूछ क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु कोई काम नहीं था, बड़ा होशियार था, अगर कान ऐसा नहीं पकड़ेंगे तो ऐसा पकड़ूंगा। तो उसने क्या पूछता है वो, हिरण्यकशिपु राजन अजेयम अजरम अमरम आत्मवत अप्रतिद्वंद्वम एक राजम विधित्सत। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते क्या क्या मांग रहा था, अजेयम कोई मुझे जीत नहीं पाए, इस पूरे ब्रह्मांड में इनडायरेक्टली भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहा है, आपके को भी आपको मिला के, कोई मुझे जीत नहीं पाए, अजेयम अजरम जरा नहीं आए, बुढ़ापा नहीं आए, मतलब नेचुरल डेथ नैसर्गिक मृत्यु आए ही नहीं, अमरम अमर बनना हूं मुझे, आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम मेरे समान और कोई नहीं हो पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में, एक राजम पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र राजा, ऐसा नहीं कि केर कोल्हापुर का एमएलए बने या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, बोले नहीं पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र राजा, सबसे श्रेष्ठ यधित सत ये बनना है मुझे। तो क्या पूछा उसने, जब पता चला कि ऐसे नहीं दे सकते, बोले सुबह मैं नहीं मरूं रात को नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं घर के बाहर नहीं मरूं, मतलब मृत्यु आएगी नहीं उसे, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं जीवित वस्तु से नहीं मृत वस्तु से नहीं, आसमान में नहीं धरती पर नहीं पानी में नहीं, रहा कहां मरने के लिए, पूरा 100% इंश्योरेंस ब्रज किशोर प्रभु भ्रमित हो जाएंगे, कैसा इसका इंश्योरेंस करा है। ऐसा पॉलिसी उसने निकाला, कोई बच ही नहीं सकता, कुछ छोड़ा नहीं हो सकता। तो पूरी तरह से उसने सुरक्षित कर लिया अपने आप को। और ब्रह्मा जी जब कमंडलों से छिप पानी छिड़के उसके ऊपर, तो ऐसा वज्र जैसा शरीर, उसको सोने जैसा, चमकते हुए सोने जैसा, तप्त कांचन गौरांग शरीर, ऐसा शरीर, वज्र देह, बहुत ही शक्तिशाली, चमकता हुआ, हृष्ट पुष्ट। और तो ये सब करके निकल पड़ा। फिर पूरे ब्रह्मांड में एक ही काम था उसका, सबको जाके उसके भाई जैसा ही ललकारना, लड़ना है तो लड़, चुपचाप नहीं तो शरण आ जा। किसी को छोड़ा नहीं, केवल ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु को छोड़ के ऋषि मुनि किन्नर देवतागण, इंद्र से लेकर पाताल लोक तक पूर्ण रूप से उसने सबको कब्जा कर लिया। करने के बाद फिर भी इतना सब, पूरे ब्रह्मांड का राजा, आप सोचो, कभी सोच सकता है कोई आजकल इसको? राजा क्या होता है कोई सोच ही नहीं सकता। ज्यादा ज्यादा एमएलए एमपी बनता है, वो भी सौभाग्य हो तो 5 साल, अगर वो बीच में इलेक्शन हो के उसको उल्टा नहीं कर दे तो 5 साल, बीच में हार्ट अटैक नहीं हो तो 5 साल, बीच में स्कैम में नहीं पकड़ा जाए, फेंक दिया नहीं जाए या अंदर चले नहीं जाए तो 5 साल। पर राजा पूरे जीवन के लिए राजा होते थे वो, पर राजा भी छोटे छोटे, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड का एक राट सम्राट, हम सोच भी नहीं सकते। जयप्रता का महाराज एक बार बोल रहे थे, 275 फुट का उसका आसन था, हम फुटबॉल खेल सकते हैं उसके ऊपर बैठ के, इतना बड़ा सोने से और से, उसमें से सब प्रकार के हीरे मोती लगे हुए आसन सिलवा के बैठने के लिए उसको। कितना बड़ा आसन होगा सोचो, वो कितना बड़ा होगा उसमें बैठने के लिए, सब ऐश्वर्यशाली, पूरे देवता नियंत्रण किए थे उसने। हमारे हाथ में टीवी, ये होता है ना टीवी का रिमोट, रिमोट ऐसा बैठे बैठे दबाया तो टीवी खुलता है, दबाया तो बंद हो गया, वॉल्यूम करना है तो ऐसा दबाया। जिस तरह से रिमोट हाथ में पकड़कर हम टीवी को नियंत्रण करते हैं, ऐसा अपनी भ्रुकुटी से, रिमोट भी नहीं, भ्रुकुटी से देवताओं को नियंत्रण करता था। आप सोचो, उसके घर में एसी नहीं था, सिर्फ वायुदेव को देखा और उसको सिर्फ बोलना था 32 degrees, 22 degrees, तो उतना ही टेम्परेचर, इस स्पीड में हवा छोड़ना। वायुदेव आके एसी का है, मैकेनिक जैसे ऐसा छोड़ते थे, भाई ठीक है आज थोड़ा ये है, थोड़ा बारिश बारिश, और गर्मी हो, मई या जून हो, कुछ भी हो, आज बहुत गर्मी लग रहा है, बारिश। समुद्र थोड़ा ऊपर आ रहा है, नीचे बहुत नीचे लग, ऊपर और थोड़ा, हाँ यस साहब। आप सोचो इस तरह से सब देवताओं को नियंत्रण किए, इंद्र भी अपने आसन के पीछे जाके, जो एक्चुअली उसने इंद्र को भगा ही दिया वहां से, इंद्र के आसन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रहा था। आजकल हम सोच भी नहीं सकते, ये हमारे लिए इसीलिए दंत कथा लगती है, नाना नानी की कहानी लगती है लोगों को, क्योंकि ऐसा इस कलयुग में अपने घर को नियंत्रण, अपने बच्चे को नियंत्रण करना बड़ा तकलीफ, तो दुनिया को क्या नियंत्रण करेगा। ये सोच भी नहीं सकते किस प्रकार का महत्वाकांक्षी था। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने पर एक समस्या थी उसकी, हमेशा चिंतित, सुखी नहीं था वो, संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का संयम नहीं था। जिसकी इंद्रियां और मन संयम में नहीं है, उसको पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व की भोग भी मिल जाए तो भी अतृप्त रहता है। जिस प्रकार रावण त्रिपुर सुंदरियों को पकड़ के लाया था, देवकन्या, राजकन्या, ऋषि कन्या, जहां भी जाता था उठा उठा के पकड़ के लाता था, सब हजारों हजारों कन्याएं, एक से एक बढ़कर सुंदर, मिस यूनिवर्स। फिर भी जब शूर्पणखा ने आके कहा, अरे क्या ये सब घोड़ी जैसी है, सीता को देख, खत्म, अभी सीता भी चाहिए, ते पण मालाच पाहिजे, मेरे अलावा और कोई भोग नहीं कर सकता। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। तो इस तरह से ये परिस्थिति, तंग आ गए पूरे देवतागण, और सब लोग जाके ब्रह्मा जी को बोले, कुछ करो भाई, अब क्या आपने शाप दे, इसको वरदान दे दिया है, हाँ दिन का रात कर देता है, रात को सोए तो दिन हो जाता है, सूरज कभी भी जाग जाता है, उसका मूड नहीं, उसको नींद नहीं आता तो दिन करा देता है वो, तो क्या हो रहा है ये, सब उल्टा सीधा कर दिया उसने। बोले जो पाप करेगा स्वर्ग जाएगा, जो पुण्य करेगा नरक जाएगा, उल्टा बदल दिया उसने, यमराज को नीचे भेज दिया और असुरों को ऊपर भेज दिया, वो पूरा उल्टा कर दिया इसने। कब तक सहन करेंगे प्रभु, कुछ तो करो। तो जब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी क्या करेंगे, बोले मैं तो दे दिया हूं इसको, मैं तो सुलझा नहीं सकता, चलो ऊपर चलो। और भगवान ने कहा, बहुत तपस्या किया उसका फल भुगत रहा है वो, जिस दिन वो अपने ही महाभागवत पुत्र प्रहलाद के ऊपर दुर्व्यवहार करेगा, मारने का प्रयास करेगा, तकलीफ में डालेगा उसे, तब उसका वध हो जाएगा। लोगों की आयु, लोगों का यश, लोगों का पुण्य कर्म, लोगों का उच्च कोटि की गति सब नष्ट हो जाती है जब वो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, करने लग शुरू हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों का तपस्या क्यों ना हो, वो तपस्या एक दिन में बह जाता है। जैसे बड़े हंडी में एक छेद बना लिया तो सब बह जाता है, इस तरह से भगवान के भक्तों के प्रति जब हम अपराध भावना रखते हैं तो हमारे जन्म, हमारे पुण्य, हमारे यश, हमारी आयु सब घट जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या किया, उसकी आयु कम हो गई, मनुष्य जैसा भी नहीं जिया, 10 साल के अंदर ही मर गया। हाँ पहले तो बहुत राज्य किया, पर जब से प्रहलाद महाराज को तकलीफ देना शुरू किया उसके बाद 5 साल भी टिका नहीं। तो प्रहलाद महाराज की कहानी वहां से शुरू होती है कि हिरण्यकशिपु वापस तपस्या करके जब आया, 5 साल का लड़का प्रहलाद को उसने अपने गुरु शुक्राचार्य, उनके शिष्य जो थे प्रोफेसर शंडा, प्रोफेसर अमरक, भाई आईआईटी के थे वो, हाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब बोलिए सरकार उसका ही है, गवर्नमेंट रन, द बेस्ट प्रोफेसर्स अवेलेबल, द बेस्ट यूनिवर्सिटी हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी। और उसमें शंडा अमरक के नीचे प्रहलाद महाराज को लगा दिया, ले इनको भी सिखाओ, मेरे जैसा बनाओ, इसको भी फर्स्ट क्लास असुर बनना चाहिए। शुक्राचार्य नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, शुक्र यानी वीर्य, शुक्र आचार्य यानी मैं आचार्य, तो मेरा बेटा भी आचार्य, चाहे योग्यता कुछ नहीं, सिर्फ आचार खाता है, फिर और कुछ नहीं, फिर भी आचार्य, क्योंकि आचार्य का बेटा आचार्य शुक्राचार्य। तो जो व्यक्ति सचमुच में, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक ब्राह्मण को कभी ऐसे व्यक्ति का क्या बोलते हैं कार्य नहीं करना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, ब्राह्मण का मतलब यही है पुरोहित, ऐसे व्यक्ति का पुरोहित बनना जो आध्यात्मिक प्रगति में दिलचस्पी रखता है, ना कि ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक लोग हैं हिरण्यकशिपु जैसे, जो लोग स्वार्थ के लिए कुछ करना करवाना चाहते हो स्थूल रूप के स्वार्थ से, और किसी तरह से पैसा आ जाए चलेगा, हमको पैसा चाहिए, ये कहते हैं शुक्राचार्य। शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज बड़े अच्छे से, जो आजकल के विद्यार्थी हैं वो सीख सकते हैं प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज जाके सुनते थे, चुपचाप बैठ के सब सुनते थे, किसी चीज को हृदय से स्वीकार नहीं किया। बच्चों, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। हाँ गुरुजी, परीक्षा में लिखा बंदर थे, पर हृदय में क्या है? ब्रह्मा जी थे। तो प्रहलाद हाँ में हाँ मिलाता था, एग्जाम पास होता था एकदम फर्स्ट क्लास, पर हृदय से किसी चीज को स्वीकार नहीं किया। तो और उसे मालूम था कि शंडा अमर का जो है क्या सिखा रहे, राजनीति सिखा रहे, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये देवता हमारे शत्रु हैं, हम असुर सबसे श्रेष्ठ हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तो भेदभाव करना और ग्रुप बनाना, दो अलग अलग बना के झगड़ा, तो इन चीजों में दिलचस्पी नहीं था प्रहलाद महाराज को, क्योंकि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। समदर्शी होता है भक्त, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, हर एक जीव के आत्मा को देखता है वो, कि ये आत्मा भी भगवान से अलग होकर भटक रहा है इस संसार में। तो भले वो असुर योनि में हो, कीट योनि में हो, पक्षी योनि में हो, आत्मा को देखता है वो समदर्शी। और व्यवहार कैसा होता है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीट हो, पक्षी हो, सबको किस तरह से कृष्ण भावना दे, यही उसका कार्य होता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज सुनते थे पर किसी चीज को स्वीकार नहीं किया। एक बार हिरण्यकशिपु पूरे भ्रमण करते थे, हमेशा हिरण्यकशिपु काम ही था भ्रमण करना, विश्वजीत जितना जितना बीच में आता था, छुट्टी में आता था देखने के लिए, तो ठीक है क्या बच्चे कैसे है, काई शिकला रे। तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया अपने पुत्र को, बैठाया, गोद पे बैठाया, बेटा बोल क्या सीखा, टीचर ने क्या सिखाया तुझे, 5 साल का लड़का कोई है इधर, 5 साल छोटा, केजी स्कूल में जाता है। हिरण्यकशिपु क्या सोचा, बोलेगा कुछ तो बड़बड़ करेगा, बेमतलब की बातें करेगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओ शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके ठीक ठीक, जा बेटा जा सीखते रहना, अच्छा सीख, इतना ही अपेक्षा था हिरण्यकशिपु का, बेटा कुछ अच्छा चीज बोलेगा, बड़बड़ाएगा, जाएगा। बोले बेटा क्या सीखा तू बता, सबसे श्रेष्ठ तेरे गुरु जी से क्या सीखा बता। बोलू पिताजी, बोल बेटा, आंखों से आंसू आ रही थी, हाँ 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 सूंघ रहा था सर को मेरा बेटा। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमंधकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रये तद। ये बच्चा बोल रहा है, तत्साधु मन्ये, सबसे श्रेष्ठ चीज आप पूछ रहे हो ना पिताजी, यही मैंने सीखा है, क्या असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, देहिनाम, जिसको भी एक देह मिला है, कैसा देह है, सदा समुद्विग्न धियाम, जिसकी बुद्धि 24 घंटे सदा समुद्विग्न, हमेशा चिंता चिंतित रहते। इस पूरी दुनिया में देखो करोड़पति भी चिंतित है, यहां एक्चुअली करोड़पतियों को ज्यादा चिंता रहता है, क्योंकि करोड़ बनाने में कितना चिंता प्रयास, और करोड़ को बचाए रखने में कितना प्रयास, खर्चा करूं कि नहीं करूं, किधर डालूं, कम से कम टैक्स देकर ज्यादा से ज्यादा लूटू कैसे, उनको ही चिंता ज्यादा जरता है। सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, असत को पकड़ के सत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मरते हुए शरीर को, मरते हुए चीजों को हमेशा के लिए भोग करने जैसा प्रवृत्ति। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, ऐसा शरीर ऐसा घर जो अंधे अंधक क्या बोलते हैं, एक कुआं जिसमें पानी नहीं है, जिसमें गिर जाता है आदमी, चिल्लाता है कोई सुनने वाला भी नहीं, ऐसे गृह में ही जीवन, मैं शरीर हूं, मैं और मेरा। गृहमंधकूपम, छोड़ दो इसे, वनम गतो, कौन सा वन, वृंदावन, वनम गतो यद हरिमाश्रये तद, हरि का आश्रय लो पिताजी, फालतू ऐसे टाइम पास मत करो घूमते फिरते पूरे ब्रह्मांड में। जब हिरण्यकशिपु ने सुना श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, कितना निर्भय होना चाहिए, प्रहलाद सीधा बोल दिया, जिसे देवतागण डरते हैं, 5 साल का बच्चा मुंह पे बोल दिया। हिरण्यकशिपु ओ मूर्ख कहीं का, मारूंगा थप्पड़, हरिमाज शांडामर का की ओर देखे, क्या हो रहा है, इसीलिए पैसा ले रहे हो तुम लोग, इनको सिखा रहे हो हरि का आश्रय लेने के लिए। बोले सर हमने नहीं सिखाया, क्या सिखाया पता नहीं, मैंने हमने कभी नहीं बोला इसको। ओ लगता है कोई वैष्णव लोग भेष बदल के आ रहे हैं और हमारे बच्चे को बिगाड़ के जा रहे, ध्यान रखना थोड़ा, अगले बार इसके मुंह से हरि का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ सब चलेगा, ले जाके पूछे बेटा प्रहलाद तू तो बहुत होशियार है, तू बता कहाँ से सीखा ये सब, हमने तो तेरे को नहीं सिखाया, आसपास के बच्चे नहीं बोलते हमारे, कितने सुंदर सुंदर असुर के बच्चे हैं, कुछ नहीं बोलते, तू कहाँ से सीख लिया रे मोर कहीं का, कहाँ सीखा तू। तो प्रहलाद कहता है कौन से शत्रु ने तेरी बुद्धि ऐसी बुद्धि डाल दी तेरे दिमाग में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि केवल भगवान के बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आकर कोई समझता है ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है, ये विष्णु माया के कारण है। जिस भगवान ने आपको बुद्धि दिया है सब सिखाने के लिए, उसी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है इस तरह से आश्रय लेने के लिए। हे शिक्षकों, मैं भगवान के प्रति इस तरह आकर्षण महसूस करता हूं जिस तरह एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से आकर्षित होता है। बड़ा आया, हमको सिखाता है, टीचर को सिखाता है, डंडा लेके आए बोला लाओ रे छड़ी, इसको सिखाता हूं अपने आप को, बड़ा खूब मारे उसको, धमकी दिए, बोले चुपचाप बैठ के सुन, ठीक है सुन रहा था सुन रहा था। इस तरह से बहुत समय तक उसको सिखाया, और जब उनको लगा कि तैयार हो गया ये, ग्रेजुएशन हो जाएगा अभी थोड़े समय में, पास हो जाएगा 92.5%, तो ले आए हिरण्यकशिपु को पास ले आए, एकदम कैसा सिखाया देखो अभी पूछो। फिर से बैठा है प्रहलाद आके सीधा दंडवत प्रणाम, व्यवहार में देखिए सम्मान सबको दे दो, पिताजी है कुछ भी हो, असुर से असुर क्यों ना हो, प्रणाम किए। हिरण्यकशिपु के आंखों से आंसू आ गया, उसके सर को गोद में बैठाकर सूंघने लगा, बोला बेटा हा हा, बोले बता, इतने समय के बाद घूम के आया हूं मैं, बहुत समय हो गया, टीचर ने क्या सिखाया, कुछ अच्छा सबसे श्रेष्ठ क्या सिखा सुन। पिछले बार बोले था क्या प्रहलाद ने, वनम गोतु यद हरिमाश्रय था, अभी हरि का आश्रय कैसे लेना बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यध्या तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। पिताजी कैसा लगा? ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रहलाद महाराज का ये श्लोक, अगर आप सातवें स्कंद में कोई श्लोक याद करने नहीं पाए तो चलेगा, ये याद करो, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास भी लाश रे। बोले नवदा भक्ति अगर हम सीख गए, मनुष्य जीवन मिली है यही सबसे बड़ी तपस्या है, ये नवदा भक्ति, इसी को रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में मन से किया हुई भक्ति, वाणी से और शरीर से की हुई अंग जो है 64 अंगों में नवदा भक्ति को बांटा है, ये वही नवदा है, नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज महाजनों में एक इन्होंने दिया है। कितना सुंदर बात अपने पिता को कह रहे हैं। अभी आप सब जागे हैं या सोए हैं इसका मैं परीक्षा लेने वाला हूं, जैसे शंडा अमर का पूछते थे ना, वैसा तो नहीं हूं शायद मैं शिक्षक, भागवत सिखाने आया हूं। श्रवणम की उदाहरण है परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने अपना जीवन सफल किया भागवत श्रवण करके। कीर्तनों का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी, वेरी गुड। स्मरणम का उदाहरण प्रहलाद महाराज, शाबाश, चार मार्क मिला। पाद सेवनम लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमलों का सेवा करती। अर्चनम भगवान की अर्चना करके अपने जीवन को सफल किया पृथु महाराज। वंदनम प्रार्थना करके, केवल भगवान को प्रार्थना करके अपना जीवन सफल किया अक्रूर। जब वृंदावन जा रहे थे वो केवल प्रार्थना करके अपने जीवन को सफल किया। वंदनम दास्यम, आप सब बड़े अच्छे दास हो लोग हो इसीलिए हनुमान जी को याद कर रहे हो। सख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलि महाराज, अभी आपका फाइनल टेस्ट। केवल रामायण में ये नवदा भक्ति भी बताई गई है कि एक एक लोग जिन्होंने इस चीज को करके अपने जीवन को सफल, इन नवदा भक्ति में एक भी करोगे, दो या तीन करोगे तो बहुत अच्छा है, एक भी करोगे तो अपना जीवन सफल हुआ। सोच के बताइए श्रवणम से किस व्यक्ति ने अपना जीवन को सफल किया रामायण में? न्याय वाल्मीकि श्रवणम थोड़ी किए, वो तो कीर्तनम किए, आप एक स्टेप पहले ही चले गए। श्रवणम किए हनुमान जी, जब भगवान ने वर मांगा, भगवान ने पूछा कुछ वर मांगो, हनुमान तूने इतना सेवा किया हमारे लिए, बोले प्रभु जहां जहां राम कथा चल रहा हो वहां मैं बैठूं, केवल मेरा जीवन जब तक पृथ्वी चलती रहे, जब तक सूरज और चांद रहे, जहां तक राम कथा चलेगी वहां मैं मौजूद रहूंगा, लाखों कान दीजिए चलेगा पर मैं हमेशा राम कथा सुनते रहो, जहां भी राम कथा होता है वहां मैं रहना चाहता हूं। कितनी तीव्रता श्रवणम करने की। कीर्तनम वाल्मीकि मुनि, ऐसी रचना की है, ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि तुम जो लिखोगे जब तक पर्वत और नदियां बहेगी इस पृथ्वी पर तब तक रामायण चलता रहेगा। कीर्तनम कीर्तिगान, प्रभु रामचंद्र की कीर्तिगान उन्होंने किया। स्मरणम सीता देवी, कहां लंका के बीच में बैठी थी, सोच रही थी हमेशा कुछ, कितने सारे प्रलोभन, कितने खतरे, कितनी धमकी, नहीं राम के अलावा कुछ कुछ विचार नहीं। पाद सेवनम अरे जिस किसने खड़ा होकर सर पे लेकर पूजा, भरत महाराज, भरत महाराज पाद सेवन के उदाहरण है ना रामायण। अर्चनम अच्छे तरह से भगवान की सेवा की, शबरी भगवान को अच्छे तरह से हर रोज करती थी वो मतंग ऋषि के निर्देशन में, अंतिम दिनों तक जब तक प्रभु रामचंद्र नहीं आए हर रोज तैयार करके पूजा करती थी, भोग लगाती थी। वंदनम विभीषण किसने कहा, 10 में से 10 विभीषण वंदनम का उदाहरण। दास्यम हनुमान जी हो गया ऑलरेडी श्रवण, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, सब कुछ सेवा प्रभु रामचंद्र का उन्होंने किया, जन्म से लेकर अंतिम लीला तक लक्ष्मण जी कभी साथ नहीं छोड़े, सेवा 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 सेवा। दास्यम सख्यम सुग्रीव किसने कहा, 4.9 मार्क्स आउट ऑफ 5। आत्मनिवेदनम जटायु हरि वो शाबाश, संपूर्ण रूप से अपना सर्वस्व प्रभु रामचंद्र के लिए दे दिया। तो रामायण में पूरे शास्त्र में हम देखते हैं कि नवदा भक्ति के स्वरूप एक से बढ़कर एक है। प्रहलाद मां आज के दिन कम से कम ये प्रार्थना करना चाहिए, कुछ भी नहीं तो, कि ये नवदा भक्ति जो है हमारे हृदय में आ जाए और हमेशा ये हम करते रहे। जो साध्य है, जो साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन अभिधेय ज्ञान, भगवान भगवत प्रेम को प्राप्ति करने के लिए ये नवदा भक्ति। और हमने देखा है प्रभुपाद जी की कृपा से ये सुबह का कार्यक्रम जो है मंगल आरती से लेकर भागवत श्रवण तक हमारा जो सारे इस्कॉन मंदिरों में, उसमें हमने एक बार अध्ययन किया, करीब करीब 50 अंग सुबह ही हो जाता है भगवान के सामने, कीर्तन करना, चरणामृत लेना, कीर्तन करना, जप करना, भागवतम सुनना, 5 सबसे प्रमुख अंग, वो 5ों सुबह के कार्यक्रम में आ जाते हैं। भले घर में हुआ पर अगर ये कार्यक्रम जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो अगर अच्छे तरह से करेंगे तो, और हम देखते हैं जिन लोगों ने बड़ी गंभीरता से इसको स्वीकार किया है बहुत जल्द प्रगति करते हैं। महाजनो ये नगत संबंध हिरण्यकशिपु हा फेंक दिया उसे उठा के मूर्ख का, और अब घूरते हुए शिक्षकों को देखा शंडामर का, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, बोले क्या कर रहे हैं? जो आपने बोला वही कर रहे हैं महाराज, अच्छे तरह से सिखाते, पता नहीं ये कहां से आ गए, भक्त हो गए सुधरता ही नहीं है, हम लोग अच्छे तरह से सिखा रहे। और ये सबूत दे के बताया चंडामर का कि हम लोग नादान है, हम लोगों ने ये नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहां से सीख रहा है, उसे ही पूछो कहां से सीख रहा है ये। तो हिरण्यकशिपु ने की पूछा, प्रहलाद सच बचा, सच बता किधर से सीखा तू, किसने तुझे सिखाया है, किसकी सुनकर तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। मति भ्रष्ट हो गई है पिताजी, सुनो, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानां। जो अपने इंद्रियों को काबू में नहीं किया है, खुद की प्रयास से, दूसरों के कहने से, और दोनों मिलके अगर प्रयास भी करे फिर भी बुद्धि सुधरने नहीं वाले। मतिर न कृष्णे परत दूसरों से स्वतो वा या मिथो भी पद दिए था, आपस में बैठकर कितना भी प्रयास कर लो, ग्रह व्रताना जो अपने आपको शरीर और शरीर के चीजों को अपना समझते हैं, मैं और मेरा शारीरिक स्तर पर है, ग्रह व्रताना अदांत गोभीर जिनकी इंद्रियां संयम नहीं है, विषवान तमिश्रम नरक की ओर जा रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना फिर से 84 लाख योनियों में वही आहार निद्रा भय मैथुन करते ही रहेंगे पिताश्री। ये अपने प्रयास से, दूसरों के कहने से, कितना भी आपस में प्रयास कर लो, ऐसी बुद्धि नहीं आने वाली। आप पूछ रहे ना कहां से आया, ऐसा प्रयास से नहीं आने वाला है। तो फिर आता कैसा है, नहीं साम मतिर तावद उरुक्रमांग, भगवान के चरणों में आना है बिना महत्पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। पिताश्री जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों के धूल में आप लोटपोट स्नान नहीं करते, अभिषेक नहीं करते अपने आप, यानी उनके आज्ञाओं को गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियो आज्ञा आर ना कोरी हो मने आशा, जब तक एक सदगुरु नहीं मिलेंगे हमको और उनके वचन से हम अपने आप को अभिषेक नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ऐसी बुद्धि आ नहीं सकती पिताश्री। हिरण्यकशिपु जब ये सुना उबलने लगा, फेंक दिया उसे उठा के अपने गोद से, मूर्ख कहेगा तो हमारे जीवन में कलंक बन गया है, हमारा नाम बर्बाद, कितना असुरों का वंश कितना श्रेष्ठ है, चंदन जैसा वन है उसमें कांटा जैसा उग गया है तू, और विष्णु एक कुलाड़ी है, कांटे के लकड़ी को लेकर कुलाड़ी बनाकर सारे चंदन के पेड़ को काटने में लगा हुआ है तू, मूर्ख कहीं का। तेरे चाचा को किसने मारा मालूम है, उसी हरि ने मारा, और तू उनके पक्षपात कर रहा है। बोल गया कि ये सुधरने नहीं वाला, तो तुरंत उसने असुरों को बुलाया, सैनिकों को, बोले इधर आओ, अभी मार डालो इसे, नहीं चाहिए ऐसा, अरे शरीर में अगर घाव हो जाए और वो फैलने लगे, कैंसर हो जाए, काट के फेंक देना चाहिए, भले अपना शरीर का टुकड़ा क्यों ना हो, शरीर का टुकड़ा है कैसे काटो, मैं काट के फेंकना है, क्योंकि कैंसर है वो पूरा नष्ट कर देगा शरीर को। इस तरह से दानवों जैसा सुंदर सुंदर जो हमारा वंश है उसमें एक कैंसर आ गया प्रहलाद नाम का, ऑपरेशन करके फेंक डालो इसे, मार डालो, और बाहर भी कोई पेड़ हो भले वो जहर जैसा पेड़ हो, अगर उसमें से कुछ औषधि मिलके हमारे ठीक हो सकता है उसको ले आना चाहिए घर में, पर शरीर का अंग भी अगर शरीर के लिए खतरनाक है तो उसको काट के फेंक देना चाहिए, मार डालो इसे। ठीक है प्रभु, और अलग अलग हजारों तरीके से, आप कभी कभी प्रहलाद महाराज की फिल्म बनाते हैं लोग, उसमें आप देखेंगे क्या क्या तरीके से, आज तक आप सोच भी नहीं गए कैसा कैसा मर्डर हो सकता है, अलग अलग क्रिएटिव तरीके से मारने का प्रयास, हाथी के पैर के नीचे, कभी सांपों के बीच में गरम गरम तेल में डाल के, होलिका के गोद में बैठा के आग लगा के, किस किस तरीके से, ऊपर से पहाड़ से फेंक के, पत्थर बांध के समुद्र में डाल के, जो भी करो प्रहलाद स्मरण स्मरण जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री, वापस आ जाता है, मुझे समझता ही नहीं क्या हुआ, आ जाता था वापस। जब हिरण्यकशिपु को बताया गया, हिरण्यकशिपु चिंतित और भयभीत हो गया कि ये मरता ही नहीं है क्या, तो सर पे हाथ लिए, मतलब हाथ पे सर लिए बैठ गया, मैं क्या करूं इसे, शंडा अमर का है महाराज, कुछ बोले, अब बोले हाँ क्या बोलो, और एक चांस दे दो सुधार देंगे हम, इसका पूरा ब्रेन वॉशिंग करेंगे, ठीक है ले जाओ, ले गए प्रहलाद को, सुनाते थे, और जब वो खाना खाने जाते थे ठंडा अमर का छुट्टी में इंटरवल मध्यांतर, तो उस समय सारे बच्चों को लेकर प्रहलाद महाराज की सीट पे बैठ जाते थे, अभी मैं सिखाता हूँ तुम लोगों को, बोलो सब बोलो श्रवणम कीर्तनम, और उनको भी सब सिखाने लगा हरि नाम ले, और जब टीचर आते थे सब बैठ के जय श्री हरि 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 हरि, बोले क्या हर हर क्या क्या कर रहे हैं तुम लोग, अरे ए बोला सब बैठ गए, फिर जैसे शिक्षक गए हरी 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 हरी, फिर से शुरू, ये टीचर बोले इसको सुधारने के बदले पूरे सबको स्कूल को ही बिगाड़ रहा है। बोले अभी ज्यादा देर रखे तो हमारा सर काट देगा हिरण्यकशिपु। सीधा ले गए और बोले इसके पहले सारे बच्चे असुर के बच्चे भक्त बनने लगे। एक पूरा अध्याय प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं उस पर सुंदर वर्णन है। समय की पाबंदी होने के कारण नहीं जाएंगे, पर सार में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे बच्चों, असुर के बच्चों, तुम लोग असुर नहीं हो, आत्मा हो, पर असुर योनि में आ गए हो, फिर भी सुनो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मा। अरे मनुष्य जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन में जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट का प्रोग्राम है ये, जल्द से जल्द कुमार अवस्था में भगवान के शरण जाना चाहिए। कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास मत किया करो, पर जिस स्थिति में भी भगवान ने रखा है उसमें संतुष्ट रहा करो, क्योंकि जीवन बहुत ही नश्वर है, बहुत ही कम समय है हमारे पास। हर क्षण को भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति में लगाया करो और एक क्षण भी बर्बाद होने न दो। ये मत कहो कि आज भोग खूब भोग करेंगे और बुढ़ापे में भक्ति करेंगे ना। कभी कभी लोग कहते हैं अभी अभी मैं खूब मौज कर लूंगा, बाद में भक्ति तो करना ही है महाराज। बोले नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो दिव्य है और भौतिक ज्ञान जो है हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, केवल बंधन में फंसाता है। कोई भी भौतिक योग्यता जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है भक्ति करने की। भक्ति का ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, केवल श्रद्धा होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और ये ज्ञान मैंने नारद मुनि से प्राप्त किया। तो बच्चों ने पूछा, प्रहलाद तू इतना प्रगतिशील कैसा हो गया, हम भी सुन रहे तुझसे, पर तू तो बहुत प्रगतिशील लगता है, ये कैसे हो गया। तब प्रहलाद महाराज ने कहा, अरे मैं तो मां के गर्भ में ही सुना था। बोला अच्छा, हाँ। बोले जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया तो सारे देवतागण आए थे, देखे कयादु हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती है। बोले एक हिरण्यकशिपु सरदर्द बहुत हो गया, दो हो गए तो बाप शेर तो बेटा सवा शेर, अभी मार डालो उसको, चलो कयादु को उठा के ले जाते हैं, जैसा बच्चा पैदा होगा मार डालते उसको। उन्हें मालूम था गर्भपात नहीं करना चाहिए, असुर भी नहीं करते, पर कलयुग में हमारी परिस्थिति असुरों से भी गई गुजरी। बोले बच्चा पैदा होने के बाद मारेंगे इसको, छोटा हिरण्यकशिपु आएगा ना, हिरण्यकशिपु जूनियर, मार डालेंगे। पर नारद मुनि वहां आए, अरे बोले रखो चुपचाप, छोड़ो हिरण, कह दो छोड़ो, इसके गर्भ में महाभागवत है, यही तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम सबको बचाएगा, छोड़ दो। बोले महाभागवत है, तीन बार परिक्रमा किए कयादु को, प्रणाम करके चले गए सब देवता को। नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में ले गए, पता नहीं और कोई देवता आके उठा के ले जाएगा, फिर से मार देगा उसे। तो बुलाओ मेरे आश्रम में, तुम रहा करो। और हर रोज नारद मुनि कयादु को भागवत धर्म के प्रशिक्षण देते थे। कयादु बेचारी थक थक के कभी कभी सो जाती थी, पर गर्भ में प्रहलाद महाराज, क्योंकि जो बहुत तीव्र परिस्थिति में है ना, तड़प रहा है, वो सुनने के लिए योग्य है। घर में परिस्थिति ऐसी होती है, सुनने के लिए एकदम तीव्र रहता है बच्चा, तो उस समय बड़े ध्यान से उसने सुना। इसी समय गर्भवती जब होते हैं माताएं, उसमें ज्यादा ऐसा वातावरण ऐसा होना चाहिए, आध्यात्मिक वातावरण। तो प्रहलाद सुन रहे थे बड़ी तीव्रता से। कयादु ने पूछा, हिरण्यकशिपु आने तक मैं संरक्षण चाहती हूँ आपके निर्देश। बोले कोई चिंता नहीं, यहीं रहो जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं है। एक IIT का लड़का, एक बार किसी ने पूछा, प्रभु जी हिरण्यकशिपु तो तपस्या के लिए 100 साल चला गया, तो जब आया तो प्रहलाद महाराज 5 साल के कैसे, गर्भवती तो बच्चा हो गया, वो भी 100 साल हो जाना चाहिए देवताओं का। बोले नारद मुनि ने उनको ये वरदान दिया था, ठीक है हिरण्यकशिपु आने तक तेरा बच्चा पैदा नहीं होगा, वो आने के बाद बच्चा पैदा होगा, सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से जब हिरण्यकशिपु आया वापस, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अपनी माँ के गर्भ में ही संपूर्ण रूप से सुना। फिर जब शिक्षक वापस आए तो बोले ये क्या सुधा, ये लोग इनको पूरा प्रचार करके हरे कृष्णा बना दिया है, तो हिरण्यकशिपु इंस्टीट्यूट छोड़ के हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट हो गया। बोले तुरंत जाके हिरण्यकशिपु को बोलना पड़ेगा, जाके बोले प्रभु हैंड्स अप, हमने पूरा शरणागत हो गया, हम छोड़ दिए, हम नहीं रहे, अगर आप कुछ नहीं करोगे प्रहलाद को कि पूरे के पूरे असुर जो है देवता बन जाएंगे, हमारे शत्रु बन जाएंगे, कुछ तो करो अर्जेंटली। जब हिरण्यकशिपु ने ये सुना कि न केवल ये सुधरने के लिए भेजा हूं तो सबको बिगाड़ रहा है, हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, अपना होश खो बैठा हो, गुस्से से उसने बोला बुलाओ उसको, उस प्रहलाद को घसीट के ले आए, प्रहलाद को सामने खड़ा किया। प्रहलाद ने देखा कि हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया, सीधा आके पैर पड़ गया और कहने लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने लगा हिरण्यकशिपु के, सुधर जाओ, अब हरि का आश्रय ले लो, क्रोध से मत हो जाओ। पर कहां सुनता हिरण्यकशिपु, कौन से सुनने के मूड में तो था नहीं वो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, मूर्ख, तीनों लोकों के देवता मेरे सामने आके हिलते हैं, कांपते हैं, मेरी भ्रुकुटी हिलती है तो कांपते हैं, मूर्ख तेरे में कहां से ऐसी शक्ति आई कि मेरे विरुद्ध तू जा रहा है, कहां से तेरी शक्ति आ रही है कि मेरे विरुद्ध तू बोल रहा है, मेरे सामने खड़ा हो रहा है, क्या उद्दंडता है तेरी। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी बड़ी सरल सी बात है, जहां से आपको मिल रही है शक्ति वहीं से मेरे को भी मिल रही है। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही, एक बार एक पंखे ने ट्यूबलाइट से पूछा कि दोस्त तेरे को कहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो पंखे ने कहा तू सचमुच में ट्यूबलाइट है रे, तेरे को जहां से मिलता है वहीं से मेरे को भी मिलता है, इतना भी नहीं मालूम, स्विच दबाने से आता है हम दोनों को। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेरजुन तिष्ठति बलम बलवताम चाहम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि। गीता भगवान ने कहा है सबको सोर्स तो एक ही है, सर्व कारण कारणम, एक ही जनरेटर है, उसी में तो सबको करंट आ रहा है। यौंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयति, अगर वो शक्ति नहीं देंगे तो हाथ हिलेगा नहीं, एक आंख की भ्रुकुटी नहीं उठेगी, पलक नहीं झपकेगा, एक शब्द बोल नहीं पाएंगे, तो सब वहीं से आ रहा है। हे पिताश्री, कृपया आप ये जो शत्रु और मित्र का भाव है, ये मेरे शत्रु ये मेरे मित्र है, ये आप त्याग दीजिए और आप शांत हो जाइए। आप चाहते हो, जानना चाहते हो कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु है पथभ्रष्ट हुआ मन और अनियंत्रित इंद्रियां, इसके अलावा और कोई शत्रु नहीं है पिताश्री, इसको आप संयम करो। और इस तरह से भगवान की भक्ति बड़े आसानी हो जाएगी। हिरण्यकशिपु बोलो, तू मुझे सिखा रहा है इंद्रियों को संयम करना, देवताओं के 100 साल तक मैंने इंद्रियों को संयम किया है, 5 साल का बुटका आके मेरे को सुनाता है इंद्रियों को संयम करना, कभी किया है संयम, सुबह शाम प्रसाद खाता रहता है, आज तुझे मैं सिखाता हूं इंद्रियों को संयम करना। जो मरने की स्थिति में आ जाता है इस तरह से बड़बड़ाता है, जब मृत्यु का समय आ जाता है ना, लोग बड़बड़ाना शुरू करते हैं, समझ लेने का भी पास आ गया समय, तो बोले इसलिए तू इस तरह से तू बड़बड़ा रहा है, भगवान है सर्वशक्ति भगवान है, कहां है वो तेरा भगवान, अगर सर्वव्यापी है, अगर सर्वशक्तिशाली है। हिरण्यकशिपु के वो अपने हाथों से बनाए हुआ 2 पिलर था फर्स्ट क्लास, ऐसा नहीं कि देवता ने आके बना के नरसिंह देव को अंदर रखे थे, जैसा हम लोग ड्रामा में करते, पहले नरसिंह देव को खड़ा करके बाद में थर्मोकोल का पिलर बनाते। हिरण्यकशिपु का बनाया हुआ 2 स्तंभ था उधर, फर्स्ट क्लास खड़ा किया हुआ। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, सब जगह है ना, सब जगह है, जिस खम्भे में है इधर है उधर, सब जगह है, इधर है उधर भी है, बोर्ड में, बोर्ड खम्भे में है, बोले खम्भे में भी है उधर भी है तो इधर भी है ना, खम्भे में है ना है ना खम्भे में। मूर्ख, अब तुझे मैं मार डालता हूं, सर धड़ से अलग करता हूं, देखते हैं कहां तेरा भगवान है, आके बचाने दे तुझे। बाएं हाथ से तलवार लिया और दाएं हाथ से एक मुट्ठी से उस खंभे को जोर से प्रहार किया। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया मुट्ठी से, बाएं मुट्ठी से जोर से उस खंभे को मारा, पूरा एकदम खंभा टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरण्यकशिपु को लगा, वाह मैंने तोड़ा पर ये टूटते ही एक ऐसा चोर का आवाज, निनदह, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बोले क्या हो रहा है भाई, कोई आवाज क्यों कर रहे हो, ब्रह्मा जी को सुनाई देने वाला आवाज। आसपास के सब लोग तो बेहोशी हो गए, बाद में उठे 5 मिनट के बाद, क्या हुआ सुनने के, ऐसा आवाज और सब देख रहे कहां है, कहां से आ रहा है, कहां से, किसी को समझा भी नहीं। एक्चुअली आवाज डर पैदा करता है, कभी आप देखो बहुत जोर का आवाज आता है तो डर पैदा हो जाता है, बड़ा बम फूट गया पीछे से, डर पैदा हो जाता है, बहुत आवाज। और तब उस खंभे में से न मृगम न मानुषः, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। समय ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी प्रकट करना था नरसिंहदेव को, क्योंकि बच्चे लोग वहां नरसिंह ड्रामा करने के लिए तैयार। भगवान प्रकट हुए तो ज्यादा कथा लंबा नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर से हिरण्यकशिपु को सोचा, पहले तो चकित हो गया, बोले कौन सा जीव है, 84 लाख मैंने पूरा देख के आया, ये कौन सा है, उसमें तो फिट नहीं होता। तब पता चला निश्चित रूप से हरि है, फिर भी मैं मार सकता हूं, मुझे कौन मार सकता है। तलवार लेके जैसा एक कीड़ा जलते अग्नि में घुस जाता है, पतंगा इस तरह से करके घुस गया, दिखाने किधर गया, बस अंदर चला गया, फिर वहां से आया वापस, सब समझ में आया अभी भी जिंदा है वो, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है भगवान को मारने के लिए। भगवान इतना स्वरूप, मतलब बादल जब अपने ऐसा शरीर को हिलाते थे अपने, वो क्या बोलते हैं, नहीं मेन उसको क्या बोलते हैं, शेर का, हाँ ऐसा हिलाते थे तो बादल सब छितरा जाते थे, ऐसा करके खड़े हो गए भगवान सिंह, सब हिलने लगे। फिर हिरण्यकशिपु के साथ थोड़ा ऐसे झगड़ा किया सबको खुश करने के लिए, बेचारा इतना तपस्या किया थोड़ा खेलना चाहिए उसके साथ, जैसा गरुड़ जी सांप के साथ खेलती है। मैंने देखा एक बार अपने मंदिर के सामने, गरुड़ जी को नहीं बिल्ली को देखा, एक बिल्ली चूहे को पकड़ ली और उसके बाद उसको छोड़ दी, उसको कुड़ कुड़ भाग रहा है एकदम, वो उसके बिल के अंदर घुसना है, फिर से पकड़ना, ऐसा करके मुंह से मारना, उठा के उधर पटक दे, 4 फीट दूर, और फट 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 बाहर क्या था, फिर से पकड़ना, फिर खेल रही थी वो। अच्छा देखिए एकदम अंदर घूर रहा, पूछ पकड़ के एक फाट मार खत्म, बिल्ली को ऐसे ही मार देने मजा नहीं आता, क्या मार ऐसे मर गया था, थोड़ा घुमा फिरा के खेल कूद के मारना। इस तरह से भगवान ने थोड़ा खेल कूद किया, बोला क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोल के रखा है सूर्यास्त, अभी सूर्य चमक रहा है, दिन को हो गया तो मुश्किल हो जाएगा ना, ब्रह्मा जी का नाक कट जाएगा सबके सामने, फिर वरदान देंगे तो बोलेंगे तो विश्वास नहीं है, किसको भी वरदान देता है। तो ब्रह्मा जी का वरदान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ब्रह्मा जी ने कहा है, तो ब्रह्मा जी का वर बचाने के लिए थोड़ा खेल कूद किए, जब तक सूर्यास्त होने आया, दिन भी नहीं रात भी नहीं, गोद पे बैठा लिए, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, अपने नाखून से नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, और नाखून ऐसा है जीवित भी नहीं है मृत भी नहीं, मरा हुआ है नहीं, बढ़ता है ना, जीवित है नहीं, जीवित भी नहीं है, काट सकते तो दर्द नहीं होता, नाखून अजीब चीज है, मरा भी नहीं है जिंदा भी नहीं, फाड़ दिया नाखून से। तो इस तरह से और हिरण्यकशिपु को फाड़ के, कि फाड़ के संतुष्ट नहीं हुए, फाड़ फाड़ के उसको अंतराल को निकाल के एकदम हार बना के लगा दी, कुछ आचार्य बोलते दबा दबा के देख रहे थे, एक दो और भी प्रहलाद है क्या अंदर, अच्छा काम एक चीज इसने चेहरे प्रहलाद को पैदा किया बस, ये एक अला और कुछ नहीं काम किया। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंह देव किए और तत्पश्चात ब्रह्मा जी सब प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी के वर को संपूर्ण किया, हिरण्यकशिपु के आसन पर बैठ गए नरसिंह देव और पूछने लगे चैलेंज कोई करता है क्या, आसन में भी बैठने वाला हूं। हाँ राक्षस लोग उसके चमचे हिरण्यकशिपु के सब लोग आए, इतने सारे हाथ सबको फाड़ फाड़ के रख दी, बोला और कोई है, कोई नहीं। इतने क्रोधित थे हिरण्य नरसिंह देव के सारे देवतागण दूर खड़े प्रणाम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सब लोगों ने प्रार्थना की, संतुष्ट नहीं हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की, ब्रह्मा जी की तो हुई नहीं, तो पूछेंगे क्या वर दिया, बेचारा प्रहलाद कर रहा था कुछ आया क्या, कुछ किया क्या तुम लोगों ने, हाँ मेरे भक्त को इतना तकलीफ हुआ, साल आकाश में बैठ के देख रहे हो तुम लोग, तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ आने के लिए, डांटेंगे बॉस डांटेंगे ना, हमने गड़बड़ी किया है, दूर से देख रहे थे। बाद में बोले क्या करेंगे, बोले लक्ष्मी जी को भेजते, प्रभु जी गुस्सा होते माता जी को भेजना पड़ता, माता जी देखो थोड़ा थोड़ा प्रसाद वसाद खिलाओ, प्रेम से बातचीत करो, आप ही को मालूम है उनका मूड कैसा हो। वो बोले ये मूड में मैंने कभी नहीं देखा प्रभु जी को, मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसा चेहरा कभी देखा नहीं, मैं शांत देखा हूं पर ऐसा नहीं देखा, गुस्सा भी देखा है कभी कभी, प्रसाद थोड़ा देर हो जाता है तो गुस्सा करते, ऐसा गुस्सा नको बाबा मैं नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे अभी गुस्सा क्यों हुए, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर बहुत बड़ा अपराध हिरण्यकशिपु ने किया था, अब प्रहलाद ही जाके सांत्वना दे सकता है। सब देवतागण प्रहलाद को बोल रहे बेटा तू जाके कर ले जो हम नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्मी जी नहीं कर पा रही है, केवल तू ही कर सकता है बेटा, जाओ भगवान को प्रसन्न कर। सब डर रहे थे भगवान के पास जाने के लिए, ऐसा मुख कभी देखा नहीं था, पर प्रहलाद भाग के गया और भगवान के चरणों में पड़ गया। कैसे, जैसा शेर का बच्चा होता है ना, शेर के पास जाके उसको चाटने लगता है, हम जाके नहीं चाट सकते, हम देखेंगे मुंह चाट के भाग जाएंगे हम लोग पसीना छूटेगा, पर शेर के बच्चे को वही शेर है। तो प्रहलाद को मालूम था ये मेरे प्रभु हैं, उनका हृदय क्या है मालूम है, कितना भी क्रोधित एक दिन अगर इंस्पेक्टर का बंदूक लेके आ जाए फिर भी उनका बच्चा बोलता है पापा ले, भले इंस्पेक्टर बंदूक लेके आ जाए, गुंडों के लिए डरेंगे पर बच्चा नहीं डरता है तो पापा आए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव ने वही केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे बहुत सुंदर से स्तुति करते हैं, आज समय नहीं है कल करेंगे कभी चर्चा। स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं वर मांग बेटा, तूने मेरे लिए कितना सहन किया और जब मैं आता हूं तो मेरा आना कभी बिना कोई उनका उद्धार किए बिना नहीं होता है, तो मांग कुछ तो मांग। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु अगर मांगने के लिए कोई भक्ति करता है तो भक्ति भक्ति ही नहीं है, मैं कुछ भी भौतिक चीजें नहीं चाहता हूं, बस मैं आपका सेवकों का सेवक बन के रहना चाहता हूं। जो भगवान के पास आकर कुछ मांगता है वो बिजनेस कर रहा है, भक्ति नहीं, मैं नारियल चढ़ाया तो इतना पैसा दिला दे, तो बिजनेस है भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। जो भगवान के सामने कुछ मांगने आता है वो भक्त भक्त नहीं है, और वो प्रभु जो क्या बोलते हैं ब्राइबिंग रिश्वत दे दे के नौकर को साथ में रखिए, वो प्रभु प्रभु कैसा, तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। पर भगवान हां बोले आप कुछ देना चाहते हो, सारी भौतिक इच्छाएं, कभी मैं प्रलोभन नहीं हूं ये। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया, बोले नहीं मैं तो देना ही चाहूंगा पूरे इस मन्वंतर तक, मन्वंतर मतलब 72 महायुग, 72 महायुग तक प्रहलाद तो इस हिरण्यकशिपु की गद्दी पे बैठकर पूरे ब्रह्मांड का राजा बनेगा, और इतनी बड़ी आयु में हमेशा तू सुखी रहेगा। जो हिरण्यकशिपु सालों सालों तपस्या करके प्राप्त करने का प्रयास किया, नहीं मिला, प्रहलाद को बिना तपस्या के मिल गया। एक मनवंतर तक आयु, पूरे ब्रह्मांड का राज्य, संपूर्ण संतुष्टि आनंद, और अगले जन्म वैकुंठ। इस जन्म में राज्य भोग करना और अगले जन्म में वैकुंठ। और बोले तू जहां भी रहेगा मेरा यश हमेशा सुनता रहेगा और पूर्ण रूप से तू मेरे ऊपर निर्भर रहेगा। शुद्ध भक्ति से कभी तू वर्जित नहीं होगा, रहित नहीं होगा। फिर भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार कर देना, भले कितना भी असुर था वो, पर उसका अंतिम संस्कार कर देना, और हमेशा भक्ति योग में यज्ञ करते रहना, यानी हरिनाम संकीर्तन करते। पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक तू कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रहलाद ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप इतना जबरदस्ती कर रहे हो तो मेरे पिता का उद्धार हो जाए बस। ये बेचारा अच्छा था, मेरा भलाई चाहता था, तो उसको समझ में नहीं था मेरी भलाई क्या है। उसको लगता था मैं भी छोटा हिरण्यकशिपु बन जाऊं, और इसलिए मेरे को ट्रेनिंग दे रहा था बस। अच्छा उद्देश्य अच्छा था, बुद्धि गलत थी, बस सुधार दो, थोड़ा उद्धार कर दो, गलतफहमी से आपके प्रति क्रोधित था। इतने प्रसन्न थे भगवान, कुछ मांगने का राह देख रहे, बोले एक क्यों, एक हजार क्यों, 21 पीढ़ी सबको मुखरी बो। 21 पीढ़ी मतलब अगले पिछले जन्म में जो तू था, तेरे माता पिता, उसके पिछले जन्म में जो था उसके माता पिता, ऐसी 21 पीढ़ी आने वाले पीढ़ी जान पीछे की पिछले जन्मों की सबका उद्धार, यानी हजारों लोगों का उद्धार। एक परिवार में एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है तो ऐसा लोगों का उद्धार होता है। तो इस तरह से भगवान बहुत संतुष्ट हुए और वहां से निकल पड़े। अंत में हमें आज के पवित्र दिन, जय श्री नरसिंह भगवान की, हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आज के पवित्र दिन भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी क्या चाहिए। दो श्लोक भगवान गीता में कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ। भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त हुआ व्यक्ति हिरण्यकशिपु, प्रभुत्व जमाना और भोग करने की प्रवृत्ति, तब तक भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। तो हमारे हृदय से ये हिरण्यकशिपु की जो प्रवृत्ति है अनर्थ भोग और ऐश्वर्य के प्रति, न धनम न जनम न सुंदरी इन कविताम वा, ये प्रभु आप निकाल दीजिए। और व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, प्रहलाद महाराज जैसे एकांत की भक्ति, एक निष्ठ भक्ति, ये हमें प्रदान कीजिए। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंग, कर कमल भगवान की एकदम मुलायम है, जिसमें प्रहलाद महाराज जैसे सर पर रखकर आशीर्वाद देते, और नख जो है हिरण्यकशिपु को फाड़ने के लिए। तो वैयक्तिक रूप से हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति चले जाए, हमारे संस्था जो है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस संस्था में हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति हम सब में है, उस सबका चले जाए, ताकि संस्था जो है प्रहलाद महाराज जैसे भक्ति करके विश्व में हिरण्यकशिपु जितने प्रवृत्ति है उसको नष्ट हो जाए, उन लोगों का नष्ट हो जाए। और परंपरागत जितने सारे भक्त है पूरे ब्रह्मांड में, उन भक्तों को भक्ति वर्धन हो, और जितने सारे आसुरिक प्रवृत्ति है संसार में वो नष्ट हो जाए। ये प्रार्थना बहुत ही अनुकूल है हमारे लिए, वैयक्तिक रूप से, सामाजिक रूप से, और पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो आज के दिन ये प्रार्थना करेंगे भगवान सिंहदेव से कि हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति हृदय से, हमारे हृदय से, भक्तों के हृदय से, पूरे संसार के हृदय से निकालकर प्रहलाद की एक निष्ठा जो प्रेम है, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में आ जाए। इस प्रार्थना करके हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। तुरंत हम लोग अभी बाहर जाएंगे, जहाँ बच्चों ने बहुत सुंदर एक कार्यक्रम तैयार करके रखा है, और जैसा कार्यक्रम हो जाएगा अंदर यहाँ आएंगे, गौर आरती होगी, उसके बाद नरसिंह आरती होगी, आज का सबसे मेन प्रोग्राम नरसिंह आरती, और तत्पश्चात आप लोग प्रसाद लेके जाइए। श्री नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सर्वानी बसून